आज हम इस पावन अवसर पे ये बताएंगे कि श्री कृष्ण का हृदय वास्तव में कैसा है, वो भीतर से कैसे हैं, असली में ब्रज में वो हैं कैसे, वो सबके मालिक हैं, परमेश्वर है, वो सब ठीक है, पर वास्तव में वो ब्रज में कैसे हैं, ये हम आचार्य गणों की जो वाणी है उनके माध्यम से रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, प्रबोधना सरस्वती, ये जो महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है, इनकी वाणी के माध्यम से हम बताएंगे श्री कृष्ण को गौड़िया वैष्णव यानी कि हम लोग जो महाप्रभु के अनुयायी हैं श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं। ये बहुत आवश्यक है, श्री कृष्ण कैसे देखते हैं गौड़िया वैष्णव, उनकी उपासना कैसे करते हैं, ये पता होना परम आवश्यक है। सुनने में कितनी सरल बात लग रही है, लेकिन 95% से ऊपर जो भक्त जो हरे कृष्ण जाप करते हैं उनको ये इस बात का उत्तर नहीं मालूम होता कि ब्रज में श्री कृष्ण कैसे हैं, उनकी उपासना कैसे की जाती है। तो जब उनकी उपासना ही नहीं होगी जिस तरीके से करी जानी चाहिए, उनको हम देख ही नहीं पाएंगे। हाउ गौड़िया वैष्णव श्री कृष्णा, देन इवन दिस बेसिक इज नॉट क्लियर, तो सिद्धि तो छोड़ो साधना भी नहीं होगी। तो ये आज हम आचार्य गणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण कैसे हैं और हमें श्री कृष्ण को किस प्रकार से देखना चाहिए। वृंदावन महिमामृत में यदि आप पढ़ें तो 87वें श्लोक में वर्णन आता है, अयम ब्रह्म ईश्वरो न गणितो अवतारो अप्यस, यानी कि श्री कृष्ण जो हैं वो अनगिनत बिना गिनती के अवतार हैं, इतने अवतार हो चुके हैं ईश्वर के, उन सब ईश्वरों के महा ईश्वर हैं, महा अधीश्वर हैं, बिल्कुल हैं, और वो दिव्य रूप से द्वारका में भी रहते हैं। श्री कृष्ण ही दिव्य रूप से द्वारका में रहते हैं, श्री कृष्ण दिव्य रूप से मधुपुरी यदुपुरी दिव्य रूप से रहते हैं, वहां पे भी अलग अलग रूप से, पर इन मथुरा के श्री कृष्ण द्वारका के श्री कृष्ण में मेरा मन हरण नहीं होता, प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, ब्रजे च मधुपुरी वन वरे ना गो गोपिका सुहृद भिर, कह रहे हैं कि मथुरापुरी से श्रेष्ठ वन ब्रज यानी कि वृंदावन में भी जब श्री कृष्ण होते हैं, देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, वो ईश्वर होंगे सबके, ठीक है, हैं निश्चित रूप से, पर उनमें मेरा मन हरण नहीं होता। फिर कह रहे हैं द्वारका में मथुरा में जो श्री कृष्ण है उनमें भी मेरा मन हरण नहीं होता। अब तो और ऊंची बात बोल रहे हैं कि जो ब्रज में श्री कृष्ण है गौओं के साथ, गोपिकाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ भी और सखाओं से भी जब घिरे रहते हैं, तब भी मुझे प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि मुझे आनंद नहीं मिलता। सोचिए मुझे आनंद कब मिलता है, मम तू राधिका कुंज गह, मेरा मन तो तभी संतुष्ट होता है, मुझे आनंद केवल तभी मिलता है, मेरा मन केवल तभी हरण होता है, मेरा चित्त सिर्फ आप तभी चुराते हो जब श्रीमती राधा रानी के कुंज में जाते हो, मेरा केवल चित्त तभी चुराते हो श्री कृष्ण आप जब आप राधा रानी के कुंज में जाते हो, भले आप अधीश्वर सर्वेश्वर ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद सब कुछ हो, द्वारकाधीश हो, मथुराधीश हो, हाँ गोपीनाथ हो, सब कुछ हो, वो सब ठीक है, पर मेरा मन कब हरण होता है, जब आप श्रीमती राधा रानी के कुंज में जाते हो। ये 387 अब 16 अध्याय का 3 नंबर श्लोक देखेंगे, उसमें वर्णन आता है कि मैं कौन से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। अभी तो आपको पता चला कि हम केवल वही गौड़िया वैष्णव वही श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं जो राधा के कुंज में जाते हैं, हमारी राधा कोई और राधा नहीं, मेरी स्वामिनी के कुंज में जब जाते हो ना रे ठाकुर, तभी मुझे भाते हो, अन्यथा नहीं। गोड़िया वैष्णव को सब सुख, सब दिव्य सुख भी पसंद नहीं है, दिव्य आनंद भी पसंद नहीं है, दिव्य रस भी सब पसंद नहीं है, यही प्रबोधन में सरस्वती हमें समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं 16 अध्याय के 3 श्लोक में कि जब अब मुझे वो श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा है जो राधा नाम के सुनने मात्र से ही जिनके मुख चंद्र से अश्रु विसर्जन होने लगता है। राधा नाम का श्रवण करने मात्र से जिन श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु विसर्जन होने लगता है, मुझे वो श्री कृष्ण के दर्शन करने। पहले कह रहे हैं कुंज में जाते हैं तो दर्शन करने हैं श्री कृष्ण के, वो कृष्ण पसंद हैं। अब कह रहे हैं जो राधा नाम श्रवण मात्र से अश्रु विसर्जन करते हैं वो श्री कृष्ण पसंद हैं, वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं 16 अध्याय के 19 श्लोक में कि कुंज कुटीशु लालये, जो गौर नील कांति में जो जोड़ी है, गौर और नील यानी श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की जो कांति में जो जोड़ी है, मैं उस जोड़ी का कुंज कुटीर में लालन करता हूँ। कुंज कुटीशु लालये, मैं कुंज कुटी में लालन करता हूँ। अब ये मत सोचो ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपनी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, देखो मैं कितना महान हूँ, कि मेरे को तो रोने वाले कृष्ण चाहिए जो राधा नाम सुनते ही जिनका अश्रु विसर्जन होता है, मैं कुंज में लालन करता हूँ। ऐसा नहीं है, गलत रूप से मत समझो। जो नित्य सिद्ध परिकर है उन्होंने अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए ग्रंथ थोड़ा ना लिखे हैं, वो तो हमारे कल्याणार्थ ग्रंथ लिखे हैं, महाप्रभु की इच्छा से हमारे इस कलयुग के सभी गौड़िया वैष्णव के कल्याण करने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। क्या कह रहे हैं, कुंज कुटीशु लालये, मैं लालन करता हूं, अर्थात तुम भी लालन करो, यही बता रहे हैं 16-19 के बाद 16-25 में। भज कुंज वीथीशु, ये जो गौर नील कांति में जोड़ी है इनको भजन करो, आज्ञा दे रहे हैं ये आचार्य, आज्ञा दे रहे हैं सभी गौड़िया वैष्णवों को, भज भजो, आज्ञा दे रहे हैं भज कुंज वीथीशु, कुंजों में मेरा भजन करो, राधा कृष्ण का भजन करो। जो गौड़िया वैष्णव की केवल कृष्ण की उपासना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम नहीं है गौड़िया वैष्णवों का, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। हमारे प्राण केवल श्री कृष्ण नहीं है, हमारे प्राण है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण में भी जब प्रार्थना कर रहे हैं राधा रा सुधा निधि में, तो कैसे बोल रहे हैं राधा ने, किस कैसे निवेदन करें, कैसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो, तत् प्राणनाथे रति, श्लोक नंबर 142 राधा रा सुधा निधि, तत् प्राणनाथे रति, आपके प्राणनाथ मेरे स्वामी उनमें मेरी रति हो, आपके प्राणनाथ में, मेरे प्राणनाथ नहीं, मेरी तो प्राणेश्वरी आप हो, वो आपके नाथ हैं, आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। और श्लोक 84 में भी वर्णन आता सुधा निधि में, राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरी जो मति है वो हमेशा राधा रानी के चरण कमलों में जो रस प्राप्त होता है उसी में मन मेरी मति रमण करे। आप इससे सब समझ पा रहे होंगे आचार्यों के जितने भी ग्रंथ हैं वो केवल राधा कृष्ण की सेवा के लिए है, कि ये सब जीव जो है गौड़िया वैष्णव जो है जब गौड़िया संप्रदाय में जुड़े हैं तो उनको भी राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, तो इसके लिए सही दृष्टिकोण होना श्री कृष्ण के प्रति, श्रीमती राधा रानी के प्रति होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हमारी हमारी भक्ति में वो बात नहीं होगी जिससे सिद्धि प्राप्त होती है। और भी बता रहे हैं वृंदावन महिमामृत में, वस राधिका पद तले नित्यम स्व तत्वे स्थितः, राजा रानी के चरण कमलों में पद तले में नित्य रहो, स्थित रहो, उनके चरण कमलों में नित्य स्थित रहो, अपने तत्व में यानी कि अपने राधा कृष्ण की सेविका के रूप में नित्य उसमें स्थित रहो, अगर गौड़िया वैष्णव की उपासना सख्य की हो या दास्य की हो या गोपी भाव की हो तो ये श्लोक एक कुछ भी एक भी श्लोक नहीं अप्लाई होगा। राधा कृष्ण की ही उपासना है गौड़िया वैष्णव की, राधा कृष्ण की जो सेवा है वो केवल और केवल उनकी दासी यानी कि किंकरी उनकी मंजरी करती है। इसलिए बताया जा रहा है प्रारंभ से कि मुझे वो ईश्वर पसंद है जो कुंज में जाते हैं, फिर वो ईश्वर पसंद है जो राधा रानी का नाम सुनते अश्रु विसर्जन करते हैं, फिर कह रहे हैं मैं उन राधा कृष्ण की कुंजों में लालन करता हूँ, प्रेम से सेवा करता हूँ, मैं भी करता हूँ तुम भी करो, भज कुंज नीतिशु। अब ये सारा का सारा जो है ये श्लोक जो है राधा रानी सुधा निधि में जाएंगे तो अन्य एक जगह पे श्लोक वर्णन आता है कि यमुना के तट पे जो कुंज मंदिर है उसमें ये सारे श्लोक का समन्वय एक श्लोक में हो जाता है कि यमुना के तट पे एक कुंज मंदिर है और कुंज मंदिर में श्री कृष्ण है वो योगियों की तरह, योगी जो होते हैं ना ध्यान करते हैं, योगियों की तरह ध्यान कर रहे हैं, ज्योति का ब्रह्म ज्योति का नहीं पद ज्योति का चरणों की ज्योति का ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण और साथ साथ में प्रेम अश्रु विसर्जन करें पद ज्योति का ध्यान करते हुए और जिनकी पद ज्योति का ध्यान करें उन्हीं के नाम का जप भी कर रहे हैं। तो प्रबोधान सरस्वती कहते हैं कि ऐसा पराविद्या ऐसा राधा नाम जो है ऐसे राधा रानी के चरणों का वो ध्यान कर रहे हैं ज्योति का और ऐसे राधा रानी का नाम का वो जप कर रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसे जो राधा नाम है मेरे हृदय में भी प्रकाशित हो स्फुरित हो, ये प्रबोधान सरस्वती प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा सब चीजों को, समाधिस्थ होके हमारे जो गौड़िया आचार्य हैं चाहे रूप गोस्वामी हो रघुनाथ दास गोस्वामी हो प्रबोधना सरस्वती हो इनको राधा नाम की अलौकिक महिमा का स्मरण होता है, उसी वजह से राधा नाम के ऊपर वो लिख पाते हैं जो कि अन्यथा सोचना भी असंभव है। ये स्मरण होता है राधा नाम की महिमा का। अब जो राधा नाम है राधा रानी जो है वो साक्षात माधुर्य की मूर्ति है, साक्षात ऐश्वर्य की मूर्ति कौन है लक्ष्मी देवी और साक्षात माधुर्य की मूर्ति कौन है श्रीमती राधा रानी। तो जो हमारे आचार्यों को गोस्वामी पादगण को जो ये स्फुरन होता है नाम महिमा वो राधा रानी की माधुर्य नाम महिमा का स्फुरन होता है, माधुर्य नाम ऐश्वर्य नाम नहीं माधुर्य नाम महिमा, वो माधुर्य की मूर्ति है तो उसी माधुर्य नाम की महिमा का स्मरण होता है आचार्यों को और वही वह अपने ग्रंथों में वर्णन करके चले जाते हैं। और जिस प्रकार से नाम के अंदर नामी के सारे गुण निहित होते हैं उसी प्रकार से राधा रानी के दिव्य राधा नाम में राधा इस दिव्य नाम में राधा रानी जो मादानाथ के महाभावती हैं उनके वो सारे गुण जो चमत्कारित्व है इस राधा नाम में निहित है और इसी दिव्य मादक का प्रदान करने वाले राधा नाम का श्री कृष्ण कुंजों के अंदर जप करते हैं अश्रु विसर्जन करते हुए और इससे पहले वो राधा रानी के चरणों की पद नख ज्योति का ध्यान करते हैं। जो ये कुंज कुटीर है बताया गया कुंज कुटीशु लालय है, ये जो कुंज कुटीर है इसमें सब कुछ हो रहा है जो अन्य श्लोकों में वर्णन आया कि नाम लेते हुए अश्रु विसर्जन ये हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है कुंज कुटीर में, कहाँ पे हो रहा है जब श्री कृष्ण कुंज में जाते हैं, तो सारी चीजें इस श्लोक में हो रही है जो हमने पहले इतने श्लोकों में आपको वर्णन की थी। जब श्री कृष्ण राधा रानी की उपासना करते हैं तो अलग अलग जगह पे उपासना करते रहते हैं, ब्रज में श्री कृष्ण राधा रानी की उपासना अलग अलग स्थान पे करते हैं पर सबसे श्रेष्ठ जो राधा रानी की उपासना का स्थान है जहां पे उन्हें सबसे श्रेष्ठ उद्दीपन होता है राधा रानी का वह है कुंज कुटीर। कुंज कुटीर में राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ जो है उद्दीपन होता है, इस श्लोक में भी बताया गया है कुंज मंदिर है, ये नहीं सोचे थे हम योग्य नहीं है, अरे भाई कुंज मंदिर की बात हो रही है तो इससे पुरुष की बात नहीं हो रही है, कुंज मंदिर मंदिर मतलब जहां उपासना होती है या भक्ति होती है या सेवा होती है हमारे इष्ट देव की, तो कुंज मंदिर जो स्त्री पुरुष का जो काम संबंध होता है उसको, वो तो काम क्रीड़ा है, वो मंदिर आप तो बोलता है मैं मंदिर में अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा कर रहे हो, नहीं, राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है वह निकुंज मंदिर कहलाया जाता है। मंदिर अति पावन स्थान, ईश्वर की लीला है। और पावन स्थान में क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। कभी कोई सोच सकता है, जब ये आचार्य वर्णन न करें कि कुंज कुटीर में श्री कृष्ण राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, राधा रानी का भी नहीं, उनकी नख चंद्र ज्योति जो है उसका ध्यान कर रहे हैं। तो जब आचार्यों के मुख से सुनेंगे तत्व का, महापुरुषों के द्वारा वो वर्णन करते हैं जब जो आचार्य वाणी है, तो ये तो श्रवण मंगलम है, इससे तो सारे हृदय की मैल गायब हो जाती है। यदि कोई सोचे केवल श्रीमद् भागवतम भगवदगीता पढ़ गया गौड़ीय दर्शन की सिद्धि प्राप्त कर लो, क्या संभव? ये रघुनाथ दास को स्वामी, प्रभुचरण सर्वे रूप स्वामी, सबने ग्रंथ किस लिए लिखे हैं? ये जो उन्होंने मार्ग बताई है, पिछले जितने ही मार्ग है उससे सर्वथा अभिन्न, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न। ग्रंथ खोलोगे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रंथ नहीं खोले तो सोचते कि हाँ बस गीता भागवत में जो लिखा है, अरे भाई कुंज कुटीशु लाल ए, राधा नाम खुल के नहीं बताया गया भागवत में, याद है कुंज कुटीशु लाल ए, कैसे लालन करना, यही इन ग्रंथों का विषय है। तो सबसे श्रेष्ठ स्थान जो राधा उपासना का श्री कृष्ण के लिए है वह कुंज कुटीर है। वह वहां पे योगियों की तरह उपासना करते हैं राधा रानी की। और जो ये स्फुरण हो रहा है सारा कुछ, ये राधा नाम की जो ये जो स्फुरण हो रहा है नाम की महिमा का, ये भी नाम की कृपा से ही हो रहा है। तो जो नाम जिस प्रकार जो लेंगे, जिस नाम का जिस रूप से आश्रय लेंगे सत्यता से, तो ही स्फुरण होगा लीलाओं का। ये बात समझना है, ये बात समझ आएगी नहीं अभी, नामाश्रय को ही केवल स्फुरण होता है लीलाओं का। तो नाम का आश्रय लेना है, ऐसे नहीं कि राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी, वो भी ठीक है, लाभ तो उनको भी अनगिनत मिलेगा, अनकाउंटेबल बेनिफिट्स मिलेंगे, परंतु नाम आश्रय अलग होता है। जो नाम इस नाम का आश्रय लेके जीवन यापन कर रहा है, पूरा समर्पित है कि जो मिलेगा ये नाम से मिलेगा, उसको जो प्राप्त होता है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, स्फुरण होता है। जैसे प्रबोधन सरस्वती बोले वैसे ही भक्तों को अभी भी होता है, वो होता ही रहता है। तो बहुत अंधेरे में तिमिर में राधा रानी अभिसारिका है, यानी कि अपने घर से रात्रि में आ रही है श्री कृष्ण से मिलन के लिए। जब वो आ रही है मिलन के लिए तो इतना अंधेरा है कि सब जगह घोर अंधेरा छाया हुआ है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतना अंधेरा है। तो जब राधा रानी आ रही है, परम सुकुमारी है और प्रगाढ़ अंधकार है, तो अनेक बाधाएं विपत्तियां हैं, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो पार करके अपने बहुत पुलकित मन से, उनके मन में तो पुलक जग रही हैं, वो आ रही हैं और आके श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आ रही हैं। तो इसी कारण से आप इशार कर रही हैं। तो जब सारी बाधा विपत्तियां पार करी और यहां पे पहुंची तो क्या देख रहे हैं, श्री कृष्ण जिनके लिए वो आई हैं वो श्री कृष्ण ही नहीं आए अब तक। तो श्री कृष्ण के विरह में वो राधा रानी जो है एकदम उत्कंठित हो जाती। तो आप सोच कहोगे कि भाई इतना अंधेरा की क्या जरूरत है, इतने कष्ट से आने की क्या जरूरत है, जो ब्रज में जो चंद्र है, जो रात्रि है, जो सूर्य है, वो सब सेवक हैं, दास हैं भगवान के, श्री कृष्ण की लीला को और रसमय बनाने के लिए सब कुछ होता है, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, ये सबका एक ही उद्देश्य है कि श्री कृष्ण की लीला और रसमय हो, श्री कृष्ण की रस वैचित्र्य का संपादन करने के लिए अंधेरा उजाला सब कुछ होता है। ये सब सेवक हैं, ये कोई संसारी नहीं है कि रात को अंधेरा ज्यादा हो गया कुछ हो नहीं सकता, नहीं नहीं, श्री कृष्ण की लीला के वैचित्र्य के लिए अंधेरा किया गया है ताकि और वैचित्र्य हो, वैरायटी हो, और रस स्वरूप है ना, रस का और भिन्न प्रकार से आस्वादन करने के लिए और अंधेरा किया गया। तो श्री कृष्ण जो है योगियों की तरह ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं आगे वर्णन आएगा कि विरह में अधीर हो गई है राधा रानी, उनसे श्वास लेना कठिन हो गया है क्योंकि इतनी बाधाएं विपत्तियां पार करके राधा रानी आई हैं और जिनके लिए आई हैं, जिनकी सेवा करने के लिए आई हैं। पहली बात ये समझिए कि कुंज मंदिर है जहां पे वो आई हैं, दूसरी बात वो सेवा के लिए आई हैं, ये कोई स्त्री पुरुष की मिलन की घटना नहीं है कोई भी, वो सेवा के लिए आ रही है। तो सेवा के लिए आ रही है और जब आगे देखा तो श्री कृष्ण जिनके लिए आई है वो ही नहीं है, तो इतनी अधीर हो जाती है कि उनकी जो दशा देखती है मंजरी किंकरी जो है वो देखा नहीं जाता कि अगर अभी श्री कृष्ण को तुरंत ढूंढ के नहीं लाए तो राधा रानी के प्राण ही निकल जाएंगे। सोचिए आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आए और इतनी हालत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि प्राण निकल जाएंगे खत्म। उसी प्रकार से राधा रानी ऐसे छटपटाती हैं कि ऐसा लगता है कि अभी प्राण निकले और अभी निकले, तो अपनी श्वास खुद की कंठ में अटक जाती है कि अगर मैंने फटाफट श्री कृष्ण को नहीं ढूंढा तो कैसे राधा रानी बचेंगी। तो उनकी दशा देख के खोज में निकल पड़ती हैं और राधा रानी के प्रेम में विवश होते हैं श्री कृष्ण। और वो क्या करते हैं, क्योंकि अंधकार इतना ज्यादा होता है तो जो कुंज निर्धारित किया था कि यहां कुंज में मिलन होगा, इस कुंज मंदिर में आना होगा सेवा के लिए, तो वो अंधेरे में वो रास्ता भूल जाते हैं, वो उनको समझ नहीं आता वो कहां पे है। तो क्या करते हैं, भूल से एक अन्य कुंज में जा पहुंचते हैं और वहां पे जाके बहुत विरह में राधा रानी से विरह महसूस करते हैं और वहां बैठ के राधा रानी के चरणों की जो नख है पदनक जो ज्योति है उसका ध्यान करने लगते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि श्री कृष्ण अन्य कुंज में गए और राधा रानी की पदनक ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ उन्हीं को पता होगा ना, जो ये मंजरी गई है राधा रानी की ढूंढने के लिए, इनको कैसे पता कि श्री कृष्ण क्या ध्यान कर रहे हैं, आंखें उनकी बंद है ध्यान कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति ध्यान कर रहा हो आपको तो नहीं पता वो क्या ध्यान कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं और मंजरी को पता है कि राधा रानी की चरण पदनक ज्योति का ध्यान, ये कैसे है, ये ऐसे है श्री मंजरियों की सेवा निष्ठा जो है इतनी उत्तम होती है कि उसी सेवा निष्ठा के कारण ध्यान दो, सेवा निष्ठा के कारण राधा रानी मंजरियों के तन मन प्राण को अपने तन मन प्राण से बिल्कुल अभिन्न समझती है, नॉन डिफरेंट एक ही समझती है। तो जैसे राधा रानी को नहीं पता होता कि श्री कृष्ण की सेवा कैसे होगी, पता होता है, तो क्योंकि तन मन प्राण अभिन्न होते हैं, राधा रानी अपनी करुणा से अभिन्न समझती हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो श्री कृष्ण का अंतःकरण तक देख पाती है। ना तत्र चक्षु गच्छति ना भाग गच्छति ना मनः, वो ईश्वर नारायण में भी ना आंखें जाती है ना मन जाता है, कुछ नहीं जाता, और राधा रानी की कृपा से वो जिनके ध्यान जो योगिंद्रों के ध्यान में नहीं आते, जो शिव जी के ध्यान में सहसा नहीं आते हजारों वर्ष की तपस्या के बाद, वो मंजरी जो है वो कृष्ण का अंतःकरण तक देख पाती है। आप सोचो, ये है राधा रानी की कृपा, ये है राधा रानी की महिमा, उनकी कृपा से वो देख पाती है कि जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी के पदनक ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये पदनक ज्योति का ध्यान क्यों कर रहे हैं, निकुंज के अंदर कोई मिलन के लिए जाता है कि पदनक ज्योति का ध्यान करने के लिए जाता है। आपका प्रश्न सही है, परंतु आप इस बात को समझें कि जो भक्तों का प्रेम है, प्रेम के अनुरूप प्रेम सेवा ग्रहण करने की जो उत्कंठामय लालसा है, जब हमारा किसी का प्रेम होता है श्री कृष्ण के लिए, तो श्री कृष्ण के अंदर भी उसी माफिक उसी मात्रा में एक उत्कंठामयी लालसा का जन्म होता है। कौन सी लालसा? उत्कंठा। अब बोलते मैं बड़ा उत्कंठित हूँ, मेरे को ये खाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ घूमना है, मेरे को बस ये करना है, इसके बड़ी उत्कंठा होती है। तो श्री कृष्ण के अंदर भी बहुत उत्कंठा वाली लालसा हो जाती है, प्रेम भक्त के प्रेम के अनुरूप। और ये जो लालसा होती है ये श्री कृष्ण का स्वरूप सिद्ध धर्म है। जैसे भगवान रसोबाई सा है ना, उसी प्रकार से उनको प्रेम सेवा ग्रहण करने की उत्कंठा में लालसा होती ही होती है। वह आत्माराम आपताम ब्रज में इस प्रकार नहीं होते हैं। भगवान को किसने कुछ नहीं चाहिए, परंतु जब कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उसी मात्रा में उनकी उत्कंठा भी उनके अंदर तत्क्षणात् उदित होती है। प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधीन। प्रेममय वपु कृष्ण, कृष्ण प्रेममय वपु हैं और भक्त प्रेमाधीन हैं। भक्तों के प्रेम के सदा अधीन रहते हैं श्री कृष्ण। यद्यपि स्वतंत्र अमी स्वतंत्र आचार, श्री कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि जबकि स्वतंत्र अमी मैं पर स्वतंत्र हूं। भागवत के प्रथम श्लोक में भी आया कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कृष्ण। यद्यपि स्वतंत्र अमी स्वतंत्र आचार, मेरा आचरण जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, तथापि भक्तवश स्वभाव अमार, फिर भी भक्तों का मैं वश होता हूं, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव का क्या मतलब होता है? चीनी का स्वभाव है मिठास देगी हमेशा, चीनी कभी नमकीन नहीं हो सकती। नमक का स्वभाव है हमेशा खारा रहेगा। जल का स्वभाव है गीलापन, वो स्वभाव छूटता ही वो चीज वो नहीं रहेगी। उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वभाव है भक्तवश, तथा भी भक्तवश स्वभाव आमार, मेरा स्वभाव है क्या कि मैं भक्त के वश हो जाता हूं। जब श्री कृष्ण भक्तों के वश हो जाते हैं तो जिस प्रकार से राधा रानी के अंदर एक अदम्य लालसा होती है, अदम्य लालसा मतलब वो लालसा जिसका दमन नहीं, जिसको सप्रेस नहीं कर, दमन नहीं कर सकते। कैसी लालसा होती है राधा रानी में? श्री कृष्ण को श्रृंगार रस में आस्वादन कराने की, कि श्री कृष्ण को श्रृंगार रस का आस्वादन कराना है। ये जो लालसा है उनकी ये प्रज्वलित होती है, इतने प्रज्वलित कि दमन नहीं कर सकते। जैसे फायर ब्रिगेड की आग लगती है तो फायर ब्रिगेड से जैसे आग का दमन कर सकते हो, एक आग लगे 500 किलोमीटर की उसको दमन फायर ब्रिगेड कर सकती है? नहीं कर सकती। तो जो राधा रानी की जो लालसा है श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आस्वादन कराने की, ये अदम्य लालसा होती है, इसका दमन नहीं करा जा सकता। और ये क्योंकि ये सेवा करना चाहती है श्री कृष्ण को श्रृंगार रस आस्वादन कराने की और वो नहीं कर पा रही, तो इसी वजह से वो वीरे में मूर्छित हो रही है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही। ये काम सुख नहीं है राधा कृष्ण की लीला, ये प्रेममय लीला है। दोनों एक दूसरे के सुखी करने के लिए परम लालायित है। एक श्रृंगार रस का स्वादन कराना चाहती है राधा रानी और दूसरे श्री कृष्ण जो है उनके अंदर अदम्य उनके अंदर एक ऐसी व्याकुलतापूर्ण लालसा होती है, उत्कंठा में लालसा होती है कि मैं उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करूं। तो दोनों अधीर हैं, एक प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए और एक प्रेम सेवा करने के लिए। काम का तो प्रश्न उनकी सखे लीला में भी नहीं है। काम मतलब कामना के मेरे हिसाब से हो, मैं ऐसा चाहता हूं मुझे खुशी मिले, ये तो ब्रज में होता ही नहीं है कहीं भी। ये तो लैंड ऑफ लव है, ये कोई गोबर गणेश संसार थोड़ा ना है कि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं जो करता हूं मेरी इच्छा पूर्ति नहीं। ब्रज में जो होता है श्रीकृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए और जो श्रीकृष्ण करते केवल और केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए। अन्यथा वर्णन आता है भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य, जो श्री कृष्ण के दास हैं जो उनके पार्षद हैं उनकी इच्छा पूर्ति के अलावा भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य, श्री कृष्ण और कोई काम ही नहीं है, वो केवल और केवल एक काम करते हैं ब्रज में, अपने पार्षदों की इच्छा की पूर्ति बस, और कोई काम नहीं है ब्रज में। आज हमने आपको बताया ना श्री कृष्ण का हृदय कैसा है, वो असली में कैसे, असली में ऐसे हैं वो। देखने में लगता है संसारी लोगों को ये राधा कृष्ण है, ये लीला रास लीला, अरे मूर्ख वो तो सबसे सेल्फलेस है श्री कृष्ण। वो तो भृत्य वांछा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य, उनका कोई काम ही नहीं है। और केवल और केवल पदम पुराण में जैसे वर्णन आया है, मद भक्ताना मद भक्त विनोदार्थम करोमी विविधा क्रिया, विविध प्रकार की क्रिया करते हैं, किसी के साथ खेलते हैं, किसी के साथ पुंज लीला करते हैं, किसी का वात्सल्य रस का स्वागत करते हैं, किस लिए? मद भक्ताना मद भक्त विनोदार्थम, भक्तों के विनोद, भक्तों के सुख के लिए करते हैं। नहीं तो वो तो आत्मा राम भक्त काम है ना, भगवान भगवान में कोई कामना जगा दे ऐसा तो कोई ना पैदा हुआ था ना हो सकता है। हाँ, प्रेम ऐसी चीज है, जिस तरीके का प्रेम होगा वैसी कामना श्री कृष्ण के हृदय में स्वतः जागृत हो जाती है। अन्यथा कोई सांसारिक गुण से श्री कृष्ण में कामना जगा दे, अरे श्री कृष्ण के दासों में कोई कामना नहीं जगा सकता, तो श्री कृष्ण में कैसे कोई कामना जगा दे। तो हम कुंज कुटीर से कहां पहुंचे जा रहे हैं, अदम्य लालसा है सेवा करने की, राधा रानी की श्रृंगार रस सेवा करने की, और अदम्य सेवा ग्रहण करने की लालसा श्री कृष्ण में भी है उसी मात्रा की। तो इसी बात से, क्योंकि इतनी मादन युक्त वासना है श्रृंगार रस की सेवा करने की, मादकता युक्त, और वैसे ही उसी मात्रा में उनकी व्याकुलता है, उत्कंठा है सेवा ग्रहण करने की, इसी उत्कंठा में वे सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए कुंज में रास्ता भूल गए, अंधकार तो एक माध्यम बना, वास्तव में प्रेम की वजह से वे रास्ता भूल गए। ऐसा अनेक बार होता है, राधा रानी भी आ रही होती है श्री कृष्ण से मिलन के लिए, वो रास्ता भूल जाती है, मंजरी उनका रास्ता दिखाकर लाती है। महाप्रभु के संबंध में भी आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत, आप पाएंगे महाप्रभु कितनी बार रास्ता भूल जाते थे, यानी कि कुंज का रास्ता, वो तो कई कई दिनों रास्ता भूल के नवद्वीप में घूमते घूमते उनको लगता था वृंदावन में आ गए। तो प्रेम में ऐसा होता है, जब प्रेम का कुछ छींटा फूटा हृदय में आएगा जिस साधक के, वह ये बातों को और अच्छे से समझ पाएगा। अभी तो आचार्य गुरुजनों की वाणी के माध्यम से हम इन चीजों को अच्छे समझने की चेष्टा करें। अन्य सब बातों को श्री कृष्ण जो है बिल्कुल भूल जाते हैं, इस वजह से श्री कृष्ण जो है अन्य कुंज में जाके घोर अंधकार के अंदर ध्यान कर रहे हैं राधा रानी की पदनक ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते हुए सोच रहे हैं इतना अंधकार है, उनका जो सारा जो उनको चिंता है वो ये है कि इतना अंधकार है, इस अंधकार में सुकुमारी जो मेरी प्यारी मेरी सर्वस्व मेरी प्रिया जी कैसे आएंगी, अंधेरे में कैसे आएंगी। फिर उनको ध्यान में आता है कि राधा रानी की जो पदनख की ज्योति है, चरण के जो नख है नाखून उनकी जो ज्योति है, वो ज्योति सूर्य की किरण की तरह पथ जो पथ होगा उसका वो आलोक प्रदान करेगी, रोशनी देगी, और वो अपने आप स्वतः पथ दिखता हुआ आएगा और मिलन तब संभव हो पाएगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण को थोड़ी सांत्वना मिलती है कि हाँ, राधा रानी के चरण रथ की जो ज्योति है इससे ही हमारा मिलन संभव होगा। तो वह ध्यान करते हैं सर्वप्रथम तो पदनक ज्योति का, और जब वो ध्यान कर रहे होते हैं ज्योति का तो वो मधुर रस में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं कि राधा रानी की जो पदनक की ज्योति है वो भी मादनाथ के महाभाव से बनी हुई है, वो कोई एक कोई जैसे कोई सूर्य की किरण है या बल्ब की ज्योति है वैसे नहीं है, वह मादनाथ के महाभाव से उद्भूत ज्योति है, वो परम रसमय ज्योति है। अन्यथा भी आप पाएंगे जब श्री कृष्ण शाम में सायकाल में जब आ रहे होते हैं, राधा रानी ऊपर अट्टालिका से देख रही होती हैं, तो भी उनके नितंबों में से जो दिव्य कांति निकलती है वही श्री कृष्ण को ऐसा मादक कर देती है, मादन रस से आस्वादन ऐसा प्रदान करती है वो ज्योति कि श्री कृष्ण वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं, उन्हें उठा के लेके जाना पड़ता है। ऐसे हैं हमारे कृष्ण और ऐसी है हमारी राधा, दोनों अलौकिक। तो यहां पे वे बिल्कुल मग्न हो जाते हैं उस माधुर्य में, एकदम योग जैसे योग लोग हैं ना ध्यानस्थ हो जाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाते हैं। और जैसे कि जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं उनके उनके भीतर जो है वो ज्योति का प्रकाश होता है, एक प्रकार से आप ये समझना चाहिए। उनका जो हृदय है वो ब्रह्म ज्योति की छटा से उद्भासित हो जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो हृदय है वो राधा रानी की चरण ज्योति से आलोकित हो जाता है, एकदम आलोकित हो जाता है। तो दोनों देखा जाए दोनों बहुत तड़प रहे हैं, श्री कृष्ण भी और राधा रानी भी। किसके लिए, किस वजह से तड़प रहे हैं बताइए? दोनों एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते हैं, केवल यही कारण है तड़पने का। वो वहां तड़प रही है राधा रानी कुंज में कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, और यहां पे श्री कृष्ण तड़प रहे हैं कि मैं सेवा ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, वो इतनी मुश्किल से सेवा बाधाएं पार करके सेवा के लिए आई है। तो काम का तो एक आयोटा लेश मात्र भी नहीं है ब्रज में। दोनों का जो पीड़ा का कारण है वह कारण है एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ स्नेह। सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो दो प्राण एक एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो, सहज स्नेह स्नेही जो एक प्राण दो देही जो। तो राधा नाम का ध्यान करते हुए, पद्म ज्योति का ध्यान करते हुए, राधा नाम का जप करते हुए प्रेम अश्रु विसर्जन होता जा रहा है। राधा एई दुति वर्ण रसामृत परिपूर्ण जग जन आह्लादक नाम, गोकुल पतिर मन नाम कोरे आकर्षण सुमधुर रसायन धाम। राधा एई दुति वर्ण, ये जो दो वर्ण है राधा रसामृत पूर्ण, ये रस अमृत से भरे हुए हैं। जग जन आह्लादक नाम, ये संपूर्ण प्राणियों का हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है ये नाम, राधा नाम, राधा राधा। गोकुल पतिर मन, श्री कृष्ण का जो मन है, नाम कोरे आकर्षण, ये जो राधा नाम है श्री कृष्ण मन को पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेता है। सुमधुर रसायन धाम, सुमधुर रसायन धाम, ये है राधा रानी का नाम। और ये नाम कहां ले रहे हैं श्री कृष्ण? सुखद कालिंदी तीरे केली कुंज अभयांतरे रत्न मंदिर दिवराती राधा पद ज्योति सुदा ध्यान करे हरि सदा निर्जन योगिंद्र ये मती, निर्जन योगिंद्र ये मती राधा पद ज्योति सुधा ध्यान करे हरि सदा, ध्यान करे हरि सदा राधा पद ज्योति सुदा सुखद कालिंदी तीरे केली कुंज अभयंतरे। सुखद अत्यंत सुख में कालिंदी के तीर पे यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा पे क्या होता है, कालिंदी तीर पे क्या होता है, केली कुंज के भीतर अभयंतरे दिन रात राधा पद नक ज्योति सुधा का ध्यान करते हैं। ध्यान करे हरि सदा, कैसे करते हैं, योगिंद्र की तरह ध्यान करते हैं, योगिंद्र की तरह। तो श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं योगिंद्र की तरह और नामानंद में उनका श्री अंग जो है वो पुलकित है। नामानंद में श्री अंग जो है पुलकित है और जो प्रेम आश्रो की जो धार है, एक दो बूंद नहीं निकली, धार निकल रही है, धार धार प्रवाहित होती जा रही है प्रेम आश्रुओं की। और मधुमेह नाम जप कर रहे हैं, राधा पद ज्योति का ध्यान कर रहे हैं और रति रस आनंद में उल्लसित हो रहे हैं, क्योंकि राधा नाम लेंगे तो कौन सा आनंद होगा, रति रस। निकुंज योन रति के निषे ध्याय याली भेर योग। अब ये जब सब गाते हैं तो ये सब पता तो होना चाहिए कैसे क्या होता है। रति रस का आनंद मिल रहा है केवल राधा में ही, राधा के नाम के मिलन से, राधा के नाम के आलिंगन से। राधा आलिंगन, राधा नाम आलिंगन भेद नहीं है, राधा और राधा नाम में कोई भेद नहीं है। राधा आलिंगन, राधा रति रस आनंद श्री कृष्ण को प्राप्त हो रहा है नाम लेने से। ये दिव्य नाम है, नाम के भीतर नामी के सभी गुण हैं, सभी गुण, और नाम लेते ही उस सारे गुणों को जो नाम ले रहा है उसके सामने जो है सारे गुण प्रकाशित हो गए, मूर्तिमान रूप में आ गए हैं। अरे जब यहां के साधक राधा नाम लेते हैं वो उनको होश नहीं रहती। कितने ऐसे भी संत हुए हैं जो राधा नाम लेते हैं परंतु इतनी शक्ति नहीं होती कि राधा नाम पूरा ले सके। हम आपको कुछ बातें बताएंगे, आपको विश्वास नहीं होगी, विश्वास होने के लिए भी अच्छे भजन की आवश्यकता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री राधिका राधा रानी का 108 नाम का स्तोत्र की रचना करी है, श्री राधिका अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र। उसके अंदर एक राधा रानी का नाम दिया है कृष्ण सर्वेन्द्रिय उन्मादी राधेति अक्षर युग्मक। ये जो दो अक्षर हैं राधा, इन दो युग्मक, इन दो अक्षरों से श्री कृष्ण सर्व इंद्रिय उन्मादी। ये राधा रानी के 108 नाम में से एक नाम है, श्री कृष्ण के सारी इंद्रियों में उन्माद प्रकट कर देती है, कर देता है ये राधा नाम। इतना दिव्य ये राधा नाम है कि श्री कृष्ण के सभी इंद्रियों में आह्लाद उत्पन्न कर देता है, उन्माद उत्पन्न कर देता है। और अन्य पार्षद हैं गोविंद दास जी, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह कह रहे हैं वृषभानु नंदिनी जपए राति दिनी भर में न बोले आना। क्या कह रहे हैं गोविंद दास जी, वृषभानु नंदिनी जपए राति दिनी, दिन रात जप करते हैं वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी, और भर में न बोले आना। वो भ्रम से भी किसी से बात नहीं करते, ऐसा नाम में डूब जाते हैं वृषभानु नंदिनी के कि भ्रम से गलती से भी किसी से बात नहीं करते। और रा को ही धा पहू कहो ही ना पा रही धारा धरी बोहे लोरा। रा बोल देते हैं, धा बोला नहीं जाता। श्री कृष्ण राधा नाम में रा बोल देते हैं, धा नहीं बोला जाता, ऐसा भी होता है। और अश्रु विसर्जन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता ही रहता है। श्रीमती राधा रानी मादनाख्य महाभावती हैं, माद्यति इति मादन, जो मद मादकता प्रदान करता है वो स्वरूप है राधा रानी का, श्री कृष्ण को मादकता प्रदान करता है। तो राधा रानी के जो मिलन में जो आनंद होता है, मादनाख्य महाभाव में राधा रानी उनके मिलन में जो आनंद है श्री कृष्ण को, वो जो नाम ले रहे हैं तो नामालिंगन हो रहा है, नामानंद प्राप्त हो रहा है। तो क्या नाम है राधा रानी का? कृष्ण सर्व इंद्रिय उन्मादी, केवल जीवा को उन्मादित नहीं करती, सारी इंद्रियों को में प्रकाश हो जाता है उस मादन भाव का नाम लेने से। तभी तो यहाँ पे भी संत जो है सब छोड़ के नाम में डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि नाम में ऐसा आनंद है फिर कुछ करने लायक नहीं रहता व्यक्ति, इसलिए नाम ही लेता रहता है। जिससे आनंद मिल रहा है वही तो वो करेगा कंटिन्यू, कोई तपस्या थोड़ा है कोई नाम लेना। ये तो है, ये तो भाई करोड़ रुपए के बाद 1 करोड़ रुपए और मिल रहा है, फिर और करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ऐसे है, कोई तपस्या नहीं है नाम लेना, ये तो आनंद का विषय है, आनंद बढ़ता रहता है, इसलिए नाम छोड़ ही नहीं सकते संत। हाँ, धा नहीं बोल पाते, ये हालत हो जाती है श्री कृष्ण की। और शिवजीव गोस्वामी बात कहते हैं भगवत संदर्भ में, अवतारान अंतर्वत परमेश्वरस्य वर्ण रूपेण अवतारोयम इति, यानी कि जैसे श्री कृष्ण उद्धार करने के लिए संसार के जीवों का या अवतरण लेते हैं, जैसे आज हम जन्माष्टमी बना रहे हैं, उसी प्रकार से अक्षर रूप में श्री कृष्ण या भगवान जो है अपनी अनंत रस माधुरी का विस्तार करते हुए जीवा पे अवतरित होते हैं, भक्त की नित्य करते हैं, और नाम और नामी में रस का भेद नहीं है, रस नाम में भी वो ही रस है जो नामी में है, क्योंकि वो नामी का नाम है। उसी प्रकार से राधा रानी जो है उनका जब नाम जो है उसमें महाभाव जो है वो जो अखंड आस्वादन है उसमें निहित है। जैसे राधा राधा नाम में डूब जाना ये जीवन की सार्थकता है श्री कृष्ण के लिए भी, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। आश्चर्य रूप है राधा नाम, इस आश्चर्य रूप का जो अनुभव है वो महापुरुष करते हैं, क्योंकि वो करते हैं तो ही उनका अनुभव होता है, बिना करे नहीं होता कुछ अनुभव। बिना पानी में उतरे स्विमिंग नहीं कर सकते, तो बिना राधा नाम में डूबे उसका आस्वादन नहीं कर सकते। आचार्यों की वाणी है कि श्री कृष्ण राधा नामानंद में डूब जाते हैं, रसामृत परिपूर्ण। जपीते राधा नाम महामंत्र सदा, नामे कोरे प्रेमेर उदय। जो राधा रानी है उनका जब नाम जपा जाता है, जपीते जपीते राधा नाम महामंत्र सदा, जो सदा राधा राधा नाम जपता है, नामे कोरे प्रेमेर उदय, जो ये नाम है ये प्रेम का उदय कर देता है हृदय में चित्त में। राधा, अरे जो श्री कृष्ण है उनका नाम ही हरि है, यानी कि वो सबका मन हरण कर लेते हैं। वो श्री कृष्ण का कुछ हरण करा जा सकता है क्या? हाँ, उनका चित्त हरण कर लेता है ये राधा नाम। ये है राधा नाम की महिमा। इसलिए आज के प्रवचन का महात्म्य टाइटल है राधा नाम महात्म्य। इनका महात्म्य का वर्णन नहीं करा जा सकता, जो श्री कृष्ण को मत कर दे ऐसा क्या व्याख्या की जा सकती है। अतएव आनंद रूप त्वमस्य श्री विग्रहस्य, जैसे श्री कृष्ण का जो विग्रह है उसमें आनंद है रस है, उसी प्रकार से भगवान के विग्रह की तरह भगवान का नाम है उसमें भी आस्वादन जो है पूर्ण आस्वादन अखंड आस्वादन नाम के अंदर निहित है। नाम विग्रह स्वरूप तीना एक रूप, तीने भेद नाई तीन चिदानंद रूप। नाम भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, ये तीनों एक हैं। तीनों में भेद नहीं है, तीनों चिदानंदमय है। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं तीनों चिदानंद, तीनों चिदानंदमय है, किसी में भेद नहीं है। भेद मोलन नाम मिलना है, नाम मिलना है सिद्धि मिलना है। वास्तविक महापुरुष के मुख से नाम प्राप्त हो जाना, नाम महिमा प्राप्त हो जाना, इससे बड़ा अनगिनत भक्त लोग हरे कृष्ण में जप करते हैं, किसको ये रस रहस्य पता है। हमारे भाग विलक्षण है जो हमें ये बात सुनने को भी प्राप्त हो रही है। जीव गोस्वामी पाद अन्यथा वर्णन करते हैं, एकम एव सच्चिदानंद रस आदि रूपम तत्वम द्विधा विभूर इत्यर्थः, यानी कि एक सच्चिदानंद जो तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, एक जो है वो नाम और नामी रूप से दो रूप से आविर्भूत हुआ है, वही सच्चिदानंद तत्व है। एक रूप से वो नाम है और एक रूप से वो नामी है, वही सच्चिदानंद तत्व। धन्य है जीव गोस्वामी बात के लिए इतने खूबसूरती से ये बता रहे हैं। अभिनत्वम नाम नामिना तो सब जानते हैं, सुना है श्लोक कि नाम नामी भेद नहीं है। वो कह रही है वो जो एक सच्चिदानंद तत्व है वही दो नाम, दो ही रूप से प्रकट है, नाम और नामी। तो जो आस्वादन नामी में है, भगवान में है, वही उनके नाम में भी है। ये जो है नाम जो है ये चिंतामणि रूप है, राधा नाम भी जो है ये चिंतामणि रूप है। की अमृत राधा नाम मधुर मधुर धाम सर्वानंद सुखेर अवधि, एई नाम चिंतामणि परामृत शिखरिणी देवे दुर्लभ रस निधि। ये जो नाम है ये चिंतामणि है, ये राधा नाम, एई नाम चिंतामणि, राधा नाम के विषय में बोला जा रहा है, परामृत शिखरिणी देवे दुर्लभ रस निधि। ये देवों को जो दुर्लभ है रस की निधि, ये रस समुद्र जो देवों को दुर्लभ है, क्या रस समुद्र, राधा नाम। ये राधा नाम जो रस समुद्र है ये देवों को दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त हो रहा है, उनकी उपासना हमें प्राप्त हो रही है, ये सुनने को मिल रहा है। इसी से पता चलता है कि राधा रानी की हमारे पर विशेष कृपा है, नहीं तो ये बात सुनने को भी नहीं मिल सकती। इतना भाग्य नहीं है किसी सामान्य जीव का कि राधा नाम की महिमा सुन सके। डूबना तो अलग बात हो गई, राधा नाम की इस प्रकार से महिमा सुन सके। ऐसे गौड़िया वैष्णवों में भी अत्यंत भाग्यवान जो है उन्हीं को ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं कि इतने आनंद में, इतने उल्लसित हो गए हैं श्री कृष्ण की, सम्यक रूप से विमोहित हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे होश ही नहीं है, नामानंद में ऐसे डूब गए हैं। यहां पे भी होता है कई संत तीन तीन दिन तक कुटिया से बाहर निकले, नामानंद में डूबे हुए हैं, ना बाथरूम, ना नहाना, ना भोजन, ना कुछ भी नहीं, तीन तीन दिन नामानंद में डूबे हुए हैं। सोच रही है मंजरी किंकरी कि श्री कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं। मंजरी को हर प्रकार के कृष्ण अच्छे नहीं लगते, जैसे बताया प्रबोधन सरस्वती ने, जो कुंज में श्री कृष्ण होते हैं, जो राधा रानी के वश होते हैं, जो राधा रानी के प्रति अनुराग से जिनका चित्त भरा हुआ होता है, वो श्री कृष्ण जो है मंजरी को पसंद है। सब सुखों को मंजरी पसंद नहीं करती राधा दासी, यानी कि गौड़िया वैष्णव। गौड़िया वैष्णव हर प्रकार के कृष्ण को नहीं चाहते, कैसे भी कृष्ण नहीं, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण जो राधा रानी के वश है, विवश है, आत्महारा हो गए हैं परमानंद में उस आस्वादन कर करके, तो ऐसे श्री कृष्ण को जो राधा नाम के जप करता है और राधा पद ज्योति के ध्यान करता है, ऐसे योगेंद्र के कृष्ण को, योगेश्वर योगी कृष्ण को दिखाना होगा स्वामिनी को। यही इच्छा हो रही है मंजरी की कि ये कृष्ण को तो मेरे को अपनी स्वामिनी को दिखाना ही होगा। ऐसा कई बार सखियां जो होती हैं वो देखती हैं कि श्री कृष्ण अन्य सखियों के पास भी जाते हैं, तो वो चिंतित होती हैं और चिंतित राधा रानी होते हैं कि कृष्ण क्यों नहीं आए। तो फिर जब देखती हैं श्री कृष्ण का हाल, तो सखियां फिर वर्णन करती हैं राधा रानी को, फिर राधा रानी को सांत्वना मिलती है। इसी प्रकार से कई बार वर्णन किया जाता है, सुनरी सखी मैं साच कहत हूँ, सुनरी सखी मैं सहच कहत हूँ, तू जल है ये मीना, तू जल है ये मीना। तेरे ही आधीन, ओ लालन तेरे ही आधीन, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी मैं साच कहत हूँ, तू जल है ये मीन, ओ लालन तेरे ही आधीन। सखी राधा ने कह रही है, सुखन सुनरी सखी मैं सच कहती है, सुनरी सखी मैं साच कहत हूँ, तू जल है राधा ने, आप जल हो, और जो श्री कृष्ण तो मीन है, मछली है, मछली पानी को छोड़कर जा सकती है? नहीं जा सकती। उसी प्रकार से कुंज में मिलन नहीं हुआ आपसे, परंतु कहीं अन्यत्र जाने का तो विचार भी नहीं आता श्री कृष्ण के मन में, वो तो आपका अन्यत्र कुंज में ध्यान कर रहे हैं। सुनरी सखी मैं साच कहत हूँ, तू जल है ये मीन, ओ लालन तेरे ही आधीन, ओ लालन तेरे ही आधीन। ये तो है ही कि मंजरियां बताती हैं कि वो श्री कृष्ण बिल्कुल अधीन है। मंजरियां छोड़ो, श्री कृष्ण स्वयं खुद बताते हैं कि मैं राधा रानी आपके बिल्कुल अधीन हूँ, श्री कृष्ण स्वयं भी बोलते हैं। आप हैरान होंगे, पर ये भी सत्य, श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं आपके बिल्कुल अधीन हूँ राधा रानी। ये वर्णन आता है वृंदावन दास जी के द्वारा, वह श्री कृष्ण की उक्ति कर रहे हैं प्रस्तुत। सुनो राधे, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सुनो राधे एई रस आमी से तोमार वश। ये जो रस है जो आप प्रदान करती है, आमी से तोमार वश, मैं आपके बिल्कुल वश हूँ, कृष्ण खुद बोल रहे हैं। तोमा बिने नाई भाई मने, मेरे मन को आपके बिना कुछ भी नहीं भाता है। जपिते तोमार नाम धैर्य ना धरे प्राण, तुआ रूप करिए ध्याने, मैं आपका नाम का जप करता हूँ, जपिते तुम्हार नाम। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी को बोल रहे हैं, जपिते तुम्हार नाम, और धैर्य न धरे प्राण, तुवा रूप करिए ध्यान। और श्री राधे वाणी जे दिखे जार मुखे सुनी, सही दिखे धाये मोर मान। श्री राधे वाणी, तो जहां श्री राधे वाणी होती है, जेडी के जार मुखे सुनी, उस वहां पे जिस मुख से मैं सुनता हूं, वहां पे मेरा मन जो है भाग जाता है। तो अगर आप राधा नाम कर रहे हो, संसार का एक व्यक्ति भी नहीं सुन रहा, ये समझो संसार बनाने वाला सुन रहा है, जगत का कोई सुने ना सुने, जगदीश्वर जरूर सुनेगा आप राधा नाम लोगे। जब लोगे तुरंत एक ऑडियंस पक्की है आपकी, श्री कृष्ण, और वो अगर ऑडियंस है तो कोई ऑडियंस चाहिए ही नहीं। इसे एकांत में बैठ के राधा नाम का आश्रय लें, जपें। जब श्री कृष्ण को उनकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है राधा नाम, तो सामान्य जी को क्यों नहीं करेगा? अपने आप से पूछें, हम सामान्य लोग हैं, हमें राधा नाम क्या नहीं प्रदान कर देगा? जो श्री कृष्ण को सब कुछ प्रदान करता है, क्या हमें हमारे स्वामी प्रदान नहीं करेगा? अपने आप से पूछें, अगर अपने आप से नहीं पूछना तो रघुनाथ दास को स्वामी से पूछ लें। रघुनाथ दास को स्वामी कह रहे हैं अष्टोदश जो नाम है, 108 नाम उनकी, उसकी फल श्रुति में कि जो भी ये अश्वदर्श नाम जो राधा रानी के हैं वो नाम लेता है, परम प्रीत्य दीनहा कातर मानसा सनातम अचिरेणेव सनातम इक्षते ध्रुवम। जो राधा रानी के नाम 108 नाम उच्चारण करता है, 108 क्या राधा नाम, एकमात्र अपने नाम में एकमात्र नाम ही पर्याप्त है, जो ये उच्चारण करता है, ये है ये वो तरीका है जिससे राधा रानी की सेवा की प्राप्ति की जा सकती है। और कैसे? सनाथम, वो अपने नाथ के साथ, यानी कि युगल किशोर साथ में प्राप्त होते हैं जो राधा नाम करता है। कृष्ण नाम करेंगे तो राधा रानी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि उनके अन्य रसों में भी कृष्ण नाम किया जा सकता है, जब राधा नाम करते हो श्री कृष्ण प्राप्त होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, वो कहां जाएंगे? राधा रानी की उपासना तो श्री कृष्ण के साथ ही होती है, उनके अलग बिना हो ही नहीं सकती, परंतु श्री कृष्ण की उपासना राधे रानी के बिना भी हो सकती है। सख्य रस है, वात्सल्य रस है, दास रस है, इत्यादि। परंतु ये तो सर्वश्रेष्ठ रस है जिससे श्री कृष्ण का अंतर तक देखा जा सकता है। गोपी नहीं देख सकती इस तरीके से अंतर श्री कृष्ण का, यशोदा नहीं देख सकती, केवल और केवल मंजरी देख सकती है राधा रानी की असीम कृपा से। इतनी ऊंचा पदवी प्राप्त होती है मंजरी पदवी बोड़िया वैष्णव की, इसकी कल्पना करना एक सामान्य जीव के लिए असंभव है। उत्कंठा से अधीर राधा रानी है, शान सुंदर नहीं पहुंच पाए हैं, तो इतनी बाधाओं को पार करके भी राधा रानी आई हैं, तो किसी प्रकार से राधा रानी को जब बताया कि राधा रानी इस प्रकार से श्री कृष्ण आपके ही नामानंद में डूबे हुए हैं, आपके ही पद्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, तो उनका एकदम खुशी हुई। खुशी किस बात की हुई कि उन्हें जो सेवा की जिसकी आकांक्षा करके आई थी अपने घर से कुंज में, घर से कुंज में आ रही है कोई काम वासना की पूर्ति के लिए, राधा रानी आ रही है ना कृष्ण आ रहे हैं, वो एक आकांक्षित सेवा करने के लिए आ रही है श्री कृष्ण की। लगा कि हाँ, अरे ये योग तो फिर से बन रहा है, मैं श्री कृष्ण की अपने आकांक्षित सेवा कर सकूंगी, तो इसलिए इस वजह से वो प्रफुल्लित हो जाती हैं, ऐसा आनंद में डूब जाती हैं जिसका मतलब वो भी डूब जाती हैं। किस बात से? कि मैं श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊंगी, सिर्फ इसी बात से आनंद में डूब जाती हैं। फिर मंजरी को पहले तो कृष्ण को संभालो, फिर राधा रानी को संभालो, तभी तो बोला सखी बिना ए लीला पुष्टि ना ही हो। अब राधा रानी को संभाल रही है, अरे सबर करो, होश में रहो, क्योंकि अगर होश में ही रहेंगी तो मिलन कैसे होगा। किसी तरीके से होश में लेके आती हैं मंजरी राधा रानी को और दिखाती हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार से राधा रानी का नाम ले रहे हैं और राधा नाम का अमृत प्रवाह चल रहा है श्री कृष्ण के मुख से। ध्यान तो चल रहा है पद्म ज्योति का और अमृत प्रवाह मुख से चल रहा है निरंतर, राधा 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 राधा, अमृत प्रवाह चल रहा है। ये श्री कृष्ण का ये जो रूप है, ये दर्शन कराती है मंजरी राधा रानी को और श्री कृष्ण को कहती है मधुर स्वर में कि हे योगीराज, हे कृष्ण, हे योगीराज, आंखें खोलकर देखो, तुमने जो साधना करी है राधा नाम जप करके, वो जो महाशक्तिशाली जो राधा नाम है, वो नामी को आकर्षित करके तुम्हारे समक्ष ले आया है, अपने साधना का फल उपभोग करो। ऐसे मंजरी कहती है, आपका साधना का फल मिल गया है, वो फल प्राप्त करके धन्य हो जाओ। आपने जो ध्यान करा जिनके श्री चरणों का, वह साक्षात राधा रानी आपके समस्त अब उपस्थित हैं। प्रत्यक्ष आस्वादन कर अपने नेत्रों को सार्थक करो। ऐसे मंजरी जो है श्री कृष्ण को राधा रानी के दर्शन करवाती है, फिर युगल मिलन माधुरी संभव हो पाती है। हमने सच बताया तो इतना कुछ बोलना था, पर समय बहुत निकल चुका है, तो अब हम बहुत संक्षिप्त करके थोड़ा सा कुछ बोलेंगे। अब तो सच्ची बात शुरू भी नहीं हुआ था, समय ही नहीं है। अन्य आचार्यगण बोलते हैं, राधा राधेति कुर्या तू, राधा राधेति पूजये, राधा राधेति जन निष्ठा, राधा राधेति जनपति, वृंदारण्य महाभागा राधा सहचरी भवे। इसका मतलब है कि जो लोग राधा राधा कीर्तन करते हैं, जो राधा रानी की पूजा करते हैं, जो राधा रानी का नाम जप करते हैं, जिनकी राधा राम में जिनकी निष्ठा है, सबसे बड़ी बात तो है निष्ठा की, जिनकी राधा राम में निष्ठा है, जो अक्षर नहीं है, ये भगवान है, भगवान रूप में अक्षर है, अक्षर रूप में भगवान है, जो मर्जी समझ लो, विग्रह है, मूर्ति नहीं है, भगवान है, अक्षर नहीं है, भगवान है, तो जो राधा नाम का जप करते हैं, जिनकी राधा नाम में पूर्ण निष्ठा है, ऐसे महाभाग्यवान जो व्यक्ति होते हैं उनका राधा रानी का मंजरी तत्व सहचरित्व प्राप्त होता है। राधा रानी की मंजरी बनते हैं जो राधा राम की पूजा करते हैं। ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। ये वर्णन आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्लोक नहीं उच्चारण करेंगे, समय कम है। जब कोई राधा नाम का उच्चारण करता है तो राश शब्द सुनते ही श्री कृष्ण जो होते हैं उसके निकट जाने के लिए एकदम हर्ष से उत्फुल्लित हो जाते हैं, एकदम बस उसके पास पहुंच जाऊं एकदम हर्ष से। कोई राह बोलता तब ये हालत श्री कृष्ण की होती है। और जब धाव उच्चारण करते हैं तो तत्क्षणात उसके पीछे चल पड़ते हैं जो राधा नाम लेता है। राग बोलते ही तो उसकी सीमा नहीं रहती कि बस उसके पीछे जाऊं। धा बोला तो उसके पीछे चलना शुरू होंगे नहीं, उसके बाद धा बोलते उसके पीछे चलना शुरू। और जब आप राधा बोल रहे हो तो सबसे पहले श्री कृष्ण आपके साथ हैं ही हैं, होना नहीं है बाद में आएंगे राधा नाम लेके नहीं आएंगे, लेने पे वो मौजूद हैं। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण ये बात वर्णन कर रही है। और आगे देखेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी 108 नंबर श्लोक में, जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सुख विलासेर निधि, हेनो राधा गुणगान ना शुलिनो मोर कान वंचित करिलो मोर विधि। यानी कि जय जय राधा नाम, जय जय शब्द क्यों बोला जाए राधा नाम, उत्कर्ष के साथ नमस्कार वाचक है ये शब्द। जय जय राधा नाम, जय जय, जय हो किसकी, राधा नाम की। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को भी पूरी तरह विमोहित कर लेता है। इतना शक्तिशाली ये नाम है कि श्री कृष्ण को पूरी तरह विमोहित कर लेता है। आप देखें सुधा नदी के 95 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे 95, यद जाप सुकृदेव गोकुल पतेर आकर्षस तत्क्षणात्। यानी कि जिन नाम का जप राधा एक बार भी कोई जप करता है तो गोकुलपति यानी कृष्ण तत्क्षण उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए किसी क्या बोला जा रहा है, नौतन दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, प्रबोधन सरस्वती बोल रहे हैं, एक बार नाम लेते हैं श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। वही ठाकुर नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं जय जय राधा नाम, जय हो मेरे स्वामी के नाम की जय हो, जय जय राधा नाम, जय जय राधा नाम, वृंदावन जार धाम, वृंदावन की मेरी महारानी, कृष्ण सुख विलासेर निधि, कृष्ण सुख विलासेर निधि। तो राधा नाम जब लेते हैं तो श्री कृष्ण तत्क्षण आकर्षित हो जाते हैं, इतनी मुख्य बात है। और श्री कृष्ण का जो ये नाम है, ये राधा रानी का जो नाम है, ये उस प्रकार से नहीं है कि जैसे अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो कि भगवान सोचे मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। जब कोई भगवान नाम लेता है ना तो भगवान उसके प्रति बिक जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे को इसकी रक्षा करनी, कोई भी नाम ले मेरे को इसकी रक्षा करनी है। तो जब अजामिल नारायण का नाम लिया तो नारायण के मन में आया कि मुझे इसकी तो रक्षा करनी है, इससे मेरा नाम लिया है। तो विष्णुदूत ने उनकी रक्षा करी। परंतु जब कोई राधा नाम लेता है तो ये नहीं सोचते श्री कृष्ण मुझे उसकी रक्षा करनी है। वह राधा नाम सुन जब कोई लेता है तो वो खुद कृतार्थ होने के लिए उसके पास पीछे आ जाते हैं जो राधा नाम लेता है, रक्षा करने के लिए नहीं आते, कृतार्थ होने के लिए आते हैं। राधा नाम से कृतार्थ होने के लिए श्री कृष्ण आ जाते हैं, अपना आत्मदान करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। मेरे को मैं भेजता हूं अपने आपको जो राधा नाम लेता है, ऐसा वर्णन बाबा जी कर रहे हैं श्लोक 68 की व्याख्या में। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर। और छोड़ो, अब हम समय नहीं है तो शीघ्र बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण सत्यभामा रुक्मिणी के साथ भी होते हैं ना, उनके शैया पे होते हैं, एक ही शैया पे श्री कृष्ण है, उनकी रानी पटरानियां हैं, तो तब भी बोलते हैं राधा 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 राधा, उनके साथ रहते हुए भी बोलते हैं। सोचो इतना राधा नाम से उनको प्रियता है, इतना राधा नाम का आश्रय उनका, वहां पे भी उन्हें सुख नहीं है अपनी रानियों के साथ भी। क्यों? क्योंकि राधा नहीं है ना वहां, राधा के बिना तो किसी को देखना भी नहीं चाहते श्री कृष्ण। राधा राधा शैया पे भी बोलते हैं श्री कृष्ण, बाकी जगह पे अभी तो बहुत वर्णन करना था पर कर नहीं पाएंगे। तो हमें किस प्रकार से राधा नाम लेना चाहिए? जो हम ये कथा भी श्रवण कर रहे हैं ये भी भूत शुद्धि के साथ करनी चाहिए। जब भगवान की विग्रह की जो सेवा की जाती है, ये सब हरे कृष्ण जप करने वाले समझें, जब ठाकुर जी की विग्रह की सेवा की जाती है भूत शुद्धि के साथ किया। भूत शुद्धि मतलब मेरा भगवान से ये अमुक संबंध है, यानी कोई सखा है तो अपने सखा माने और फिर सेवा करे ठाकुर जी की विग्रह की। कोई गोपी मानता है अपने आप गोपी माने खुद को, फिर सेवा करे। जो गौड़िया वैष्णव अपने आपको राजानी की सेविका यानी कि दासी किंकरी मंजरी माने और फिर सेवा करे, ये तो विग्रह की सेवा है। जब हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो भूत शुद्धि के साथ करनी चाहिए कथा श्रवण। भूत शुद्धि के लिए साथ करना चाहिए नाम, राधा नाम, कि मैं राधा रानी की दासी हूं, अब लो राधा नाम, जय जय राधा नाम। भूत शुद्धि के साथ नाम लेना चाहिए, भूत शुद्धि के साथ श्रवण करना चाहिए कथा का। कथा से श्रवण करें कि एक वक्ता है, वो जो ये श्लोक है श्लोकों में चित्र है, जो वक्ता है जो आचार्य गुरुजन है वो जो श्लोक में चित्र है वो हमारे सामने प्रकट करके दे रहे हैं चित्र को, और चित्र का मैं पान कर रही हूं उस स्वरूप में रहकर। तो कथा का श्रवण भूत शुद्धि के साथ करना चाहिए, नाम का जप भी भूत शुद्धि के साथ करना चाहिए, जप जो करते हैं भूत शुद्धि के साथ करना चाहिए। और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं परम प्रीत्य, परम प्रीति के साथ दीनह कातर मानसह, दीन होके कातर होके करना चाहिए, कि मैं दीन हूं मैं कातर होके तड़प तड़प के नाम लेना चाहिए, विवल होके नाम लेना चाहिए, दीन होके, यानी कि कम से कम 70 नंबर पे हूं मैं। अगर 70 लोग यहां हैं तो मैं 70 नंबर पे हूं, नहीं तो दीन ही कहां हो यार, आप तो श्रेष्ठ जन हो, श्रेष्ठ जन के लिए क्या करेगा राधा नाम, आप तो श्रेष्ठ पुरुष हो, तो दीन नहीं हो तो कोई राधा नाम कृष्ण कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो दीन होके राधा रानी का नाम लेना चाहिए। किस प्रकार से नाम लेना चाहिए? प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने। प्रीति की रीति, जो प्रीति प्रेम की रीति है कौन जानता है, रंगीलो ही जाने। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, श्री कृष्ण ही जानते हैं किस प्रकार से प्रीति की रीति है, किस प्रकार से प्रेम किया जाता है। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि, सारे लोगों के वो अधीश्वर हैं, दीन अपन को माने, अपने को परम दीन मान के राधा नाम लेते हैं श्री कृष्ण। तो अगर हम दीन नहीं मानेंगे, 70 नंबर पे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तो कोई ज्ञानी हूं, श्री कृष्ण से भी ज्यादा ज्ञानी है क्या हम? वो ज्ञान की मूर्ति है, वो मान समझते हैं कोई मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो केवल राधा नाम पर निर्भर हूं, राधा नाम का आश्रय लिया। राधा नाम लेना अलग है, राधा नाम का आश्रय लेना अलग है। राधा नाम का आश्रय मैं श्री कृष्ण लेते हैं, वैसे ही बोला जाए राधा नाम का आश्रय ले हम, आश्रय दीन मान के, मैं तो सबसे नाली से मैं पड़े कीड़े से भी नीच हूं पतित हूं, पर मैं आश्रय दापते ही हूं, वो नाम लेके उस प्रकार से नाम लेंगे तो तत्क्षण नामी मूर्त हो जाते हैं। ये निर्भर करता है किस दीनता में नाम लेते हैं, अगर हमारे को अनुभव नहीं हो रहा तो हमारी दीनता में कमी है, विनम्रता में बहुत भारी भयंकर कमी है। सोचा था बहुत कुछ काफी जगहों से आपको आपके आश्वासन के लिए बताएंगे, पर समय कम है। तुआ पद चाई राई राई बोली गद गद विकल पराण, क्षण एक कोटि कोटि युग मानत हरि वल्लभ परमाण, हरि वल्लभ परमाण, गद गद विकल पराण, तुम तुहा पथ चाई राई राई बली तुहा पथ चाई राई राई बोली गद गद विकल पराण क्षण एक कोटि कोटि युग मनत। श्री कृष्ण जब राई राई बोलते हैं, राई राई राधा राधा बोलते हैं, गद गद विकल प्राणों से, प्राण मुंह से नहीं बोलना होता, प्राणों से बोलना होता राधा नाम, एक क्षण को कोटि युग के समान मानते हैं जब राधा नाम लेते हैं। हरिवल्लभ महान संत हुए हैं वो प्रमाण कहते हैं, हरिवल्लभ प्रमाण, मैंने देखा है, देख के बोल रहा हूँ, हरिवल्लभ प्रमाण। तो इस प्रकार से नाम लेना तो है, पर कैसे लेना है ये भी आचार्यों से सीखना चाहिए, या आचार्य ही हैं जो हमें बता सकते हैं वैसे कि हमको किस प्रकार से नाम लेना है, किस प्रकार से उपासना करनी होती है। भक्ति का मतलब ही यही है कि अपने जो प्रेमास्पद हैं, जो युगल किशोर हैं, उनके सुख की लालसाओं में डूब जाना, उनके सुख की लालसाओं में डूब जाना होगा, इसको कहते हैं भजन। अभी तो हम क्या है कि अपने सुख की लालसाओं में डूबे रहते हैं। जैसे कि अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, कुछ चीजें हमें बंद करनी चाहिए, जैसे कि ये इच्छा होना कि अपना जन्मदिन मनाना या अपने परिवार में से किसी का जन्मदिन मनाना। यदि ये इच्छा है कि जन्मदिन मनाना है अपना या अपने परिवार में से किसी का, तो ये समझ लीजिए वीजा पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी है, परमानेंट इटर्नल की इटर्नल वीजा पासपोर्ट रेडी है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का, बार बार इस जगत में आना पड़ेगा अगर बर्थडे मनाने की इच्छा है अपने या किसी और की। क्योंकि ये भगवान के धाम में जब हम जाते हैं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि कोई बर्थडे मनाए हम अपना या किसी के परिवार का, अपने परिवार का। तो यदि ये इच्छा है तो वीजा पासपोर्ट रेडी है पुनः जन्म का, पुनर्जन्म का, कभी माँ के कोख से छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई माँ बनेगी बारंबार। आप ये सोचो श्लोकों में कहा गया ऐसी कोई इच्छा हो जो पशुओं से भी गई गुजरी हो तो वो कितनी लो लेवल की होगी। पशुओं के समान क्या इच्छा होती है, आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य मेतात पशु भी नाणाम, क्या ईटिंग खाना सोना सेंशुअल प्लेजर और डिफेंड करना अपना बचाव करना, ये चार चीजें जो होती है, खाना पीना सोना सेंशुअल एंजॉयमेंट करना अपना बचाव, ये तो पशुओं में भी होती है, अगर यही इच्छाएं हैं तो मनुष्य में तो पशु के समान है। परंतु यदि बर्थडे बनाने की इच्छा है तो पशु से भी गया गुजरा है, मतलब पशु से भी गए गुजरी स्थिति यदि होगी तो वो गोलोक के कुंज में कैसे पहुंचेगा, आप खुद को उत्तर दें अपने आप को। किसी मछली में इच्छा नहीं होती, किसी चींटी में इच्छा नहीं होती, किसी जिराफ में इच्छा नहीं होती अपना जन्मदिन मनाने की, अपने परिवार का किसी का जन्मदिन मनाने की, किसी वुल्फ में, किसी टाइगर में, किसी कॉकरोच में, कोई कॉकरोच में इच्छा नहीं होती मैं अपना जन्मदिन मनाऊं। तो जो इच्छा पशु में भी नहीं है, वर्ष से वर्ष पशु में, अगर वो हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में है तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी, अपने आप को उत्तर दें। और क्या सोचते हैं इस बार मेरे को क्या लेके दोगे, मेरे को आता अच्छा कुछ लेके नहीं दिया मेरे बर्थडे पे, अरे भाई क्या प्रिंसेस आ गए हो, क्या आ गए हो, दास दास अनुदास हैं बर्थडे के दिन, क्या ये अपने आप को अनुभव करते हो मैं दास दास अनुदास हूं, ठीक इसके विपरीत अनुभव करते हैं मैं तो क्वीन हूं प्रिंसेस हूं, तो दासी की तो सिद्धि मिलनी है, मान रहे क्वीन बर्थडे मनाना उस दिन डे ऑफ अ क्वीन, तो कैसे सिद्धि मिलेगी अपने आप से पूछें। कभी भी ऐसा होता है कि बर्थडे के दिन कोई फील करे कि हाँ मैं दासों का दास हूं, संतों ने हम ऐसे सिद्ध महात्मा भी जानते हैं जो अपने बर्थडे उसके अलावा अन्य दिनों पे भी बाथरूम साफ करते हैं निश्चित रूप से, कि तभी तो अनुभव होगा, मंदिर के बाथरूम बड़े बड़े बाथरूम जिनमें अनेक लोग आते हैं बाथरूम साफ करते हैं बर्थडे के दिन, सुबह सुबह उठ के ध्यान नहीं करते राधा कृष्ण का, बाथरूम साफ करते हैं एक दिन नहीं सालों एक बार जन्मदिन पर ही दिन में साल में कितनों बार, तभी तो हमारे अंदर घुसेगा कि मैं दास हूं, अभी तो मैं अपने परिवार के जन्मदिन मनाने की लालसाओं से ही भरा हुआ होता हूं, एक महीने पहले से ही शुरू हो जाता है ये मुझे क्या लेके दोगे, हम यहां जाएंगे हमने ये करना है, आप सोचो अगर एक महीने पहले शुरू हो गया तो आपका जप और गायत्री तो फॉर्मेलिटी हो गया, सच्चाई नहीं होगी उसमें, उसमें वो छटपटाहट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको तो रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हम दुखों के संसार में, दुखालयम अशाश्वतम में है, हमको तो बर्थडे मनाना है दुखों के संसार में। अश्रवक्र मुनि कह रहे हैं 15:13 श्लोक में, कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एवच। अरे भाई कहाँ है जन्म ये तो बताओ, इतना शारीरिक आवेश है कि हमको ये भी समझ आ रहा है कि जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन कैसे होगा, जन्मदिन होने के लिए जन्म तो होना पड़ेगा। बात सही है कि गलत है? अरे भाई कुछ बना रहे तो वो होना तो चाहिए कोई चीज, जन्मदिन होने के लिए जन्म होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कुतो जन्म, जन्म कहाँ है, कुतो कर्म कुतो अहंकार एवच, जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये तो वो इच्छा है जो कि गधे में भी नहीं होती, बिल्ली में भी नहीं होती, चींटी में भी नहीं होती और मनुष्य में कूट कूट के भरी है। कितना भयंकर अनर्थ है। और अगर हमारा किसी पारिवारिक किसी के बर्थडे में जाना ही पड़े तो हम खुशी से जाते हैं कि हम तड़पते हैं कि हाँ है, मेरे को ये क्या करना पड़ रहा है, अब मैं इंसानों के जन्मदिन में बनाऊंगा, मैं इतना घटिया स्तर पर पहुंच जाऊंगा, अब मनुष्यों के ऐसे चक्रों में पड़ जाऊंगा, मैं इंसानों के जन्मदिन बनाऊंगा। अब मैं इतने अच्छे इतने ऊंचे मार्ग पे आके अभी भी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं जन्मदिन मनाऊं, तो सोचिए कि कितना बड़ा मल है ये हमारे हृदय के अंदर। आज मुझे कुछ मत कहना, आज क्या है भाई, मेरा जन्मदिन है। अच्छा एक कौन सी भयंकर घटना हो गई ऐसी, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 365 दिन है, कितने हजारों का जन्म, लाखों का जन्मदिन आज है। पहली बात तो जन्म ही नहीं है, कुतो जन्म, यदि अक्षरावक्र मुनि की शास्त्रों की बातों पर विश्वास हो तो। अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं तो ना हमें समझ आ रहा है कि ना हमें कुछ मिलेगा, ना अगर हम बोल रहे हम अपना तो नहीं मनाते, घर वालों का मनाने के तो कर लेते हैं, तो आपको यह भी समझ नहीं आ रहा कि उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। असंस्पृश्य शरीरेण, अक्षरावक्र मुनि कहते हैं कि शरीर को तो स्पर्श ही नहीं करता कुछ, हमको यही समझ नहीं आ रहा कि दुखों का संसार है, मनुष्यों के चक्रों में पड़ के कुछ नहीं मिलेगा। ये मैरिज एनिवर्सरी, ये मैरिज, अब बताओ आत्मा की मैरिज भी हो जाती है, आश्चर्य मूर्ता का आश्चर्य, और उसके बाद मनाना एक मैरिज में उसकी एनिवर्सरी मनाना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। हम सर भी करते हैं गुरुजनों को वैष्णवजनों को कबाड़ दिवस, और कबाड़ दिवस कोई मनाता है क्या कोई? ठीक है कबाड़ दिवस में सेवा भी आती है, कई बार ऐसा भी हमने पाया कि सेवा भी करी जा रही है गुरुजनों वैष्णवजनों की, शाम को मॉल वॉल पे भी जाया जा रहा है घूमने या रोड पे घूमने जा रहा है। अरे भाई खुद ही अपना मटिया मेट कर रहे हो सेवा, कबाड़ दिवस से कबाड़ को खुद ही चले गए मॉल मार्केट घूमने, तो फायदा क्या, रेस्टोरेंट चले गए तो फायदा क्या हुआ करने का सेवा, ये तो रिचुअल पूरा हुआ। और एक महीने पहले से आज मेरा बर्थडे आने वाला है तो हरे कृष्णा जप गायत्री सब फॉर्मेलिटी हो गया, क्योंकि समर्पण रहा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो यहां बर्थडे मनाने में बैठ के। पशु से भी गिरी हुई ये डिजायर है, बर्थडे मनाना मतलब इंसल्ट टू वंस ओन नॉलेज, इंसल्ट है अपनी नॉलेज की, खुद की बेइज्जती करा रहे हैं अपना बर्थडे मनाकर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी का ये डिजायर नहीं होता, ना गोलोक में ना वैकुंठ में, कि मेरा बर्थडे बने, और वो पूर्ण नॉलेज में स्थित होते हैं, पूर्ण नॉलेज में स्थित है उनका डिजायर नहीं होता बर्थडे बने, और जो पशु में पूर्ण इग्नोरेंस में स्थित है उनका भी इच्छा नहीं होता बर्थडे बने। ये विचित्र मूर्खता की मूर्ति मनुष्य है, जब करने के सिद्ध प्रणाली के बाद भी इच्छा होगी बर्थडे मनाना है तो धिक्कार है ऐसे नॉलेज। प्रेमास्पद युवक किशोर की सुख की लालसाओं में खुद को डुबाना, ना कि अपने बर्थडे मनाने की लालसा में या एनिवर्सरी बनाने की लालसा में, यह हमें समझना होगा। और इसको हम पिछले सत्र से रिलेट कर सकते हैं, यदि इस इच्छा से बाहर निकलना है बर्थडे में तो भी क्या करना होगा, हरि गुरु गुरु वैष्णव की अतिशय सेवा करनी होगी, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारे अंदर ये मूर्ता जाएगी, अपने आप से नहीं जाएगी। और एक बार अच्छे समझें कि सेवा जो होती है वो होती ही मनोमयी है, अपने मन के अनुसार नहीं, संत के वैष्णव के गुरुजनों के मन के अनुसार जो सेवा की है उसको सेवा कहा जाता है, अन्यथा तो जड़ता की सेवा है। क्योंकि अगर आपने अपने मन के अनुसार सेवा की, मन तो आपका जड़ है, अगर उसी के अनुसार सेवा की तो जड़ता की सेवा, अगर सेवा ही नहीं हुई वो भगवत सेवा या संत सेवा। उनकी प्रीति विशुद्ध है तो जिस मात्रा में विशुद्धता है, उनकी प्रीति का लक्ष्य एकमात्र है, तो उसको सेवा बोला जाएगा। अन्यथा तो सेवा दिखते हुए भी सेवा नहीं होती, अपने अहम की सेवा हो रही होती कई बार। तो ध्यान देना है कि विशुद्ध मनोमय, विशुद्ध मनोमय सेवा करें। ध्यान दें शब्द विशुद्ध मनोमय सेवा। देखिए विशुद्ध मनोमय सेवा या तो अब शुरू कर दें या आने वाले जीवन में कर लें, दिस लाइफ और आफ्टर या आफ्टर इन्फाइनाइट टाइम्स, इन्फाइनाइट लाइफ, अनगिनत जन्मों बाद करें या इस जन्म में करें, आना तो यहीं पे ही है। विशुद्ध मनोमय सेवा, ज्यादा उन्होंने विशुद्ध मनोमय सेवा यही नहीं करी कभी, यही प्रैक्टिस नहीं करी सालों साल दसियों साल, तो हमारे को वो इटर्नल राधा रानी सेवा कैसे मिल जाएगी? वो तो विशुद्ध मनोमय सेवा है, तो उसकी प्रैक्टिस ही कभी भी नहीं करी, किसी के साथ भी नहीं करी। ये जितने भी थॉट्स हैं, बर्थडे नहीं मनाना, लोभ ना होना, राधा नाम लेना, जो भी हैं, ये सारे सरफेस थॉट्स रह जाते हैं हमारे। जैसे पंछी जो है पेड़ पे आया, थोड़ी देर रुका और उड़ गया, फिर उसको पेड़ से को लेना देना, ऐसे ही हमारे जो सद्विचार हैं आचार्यों के, वैष्णवों के, गुरुजनों के, पंछी की तरह हमारे ऊपर, हमारे हृदय में रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं सद्विचार। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि वो तभी टिकते हैं जिस मात्रा में मनोमयी सेवा की जाती है। अगर मनोमयी सेवा गुरु वैष्णव की नहीं हो रही तो सद्विचार हृदय में नहीं टिकेंगे, पंछी की तरह उड़ जाएंगे, हमेशा सरफेस थॉट्स रहेंगे। इसी वजह से हम किसी से बात, कई लोग हमसे मिलना चाहते हैं, सन्यासी भी इस्कॉन के इधर उधर के, कि भाई हमसे मिलना चाहते, हम नहीं मिलते, क्योंकि आप गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करोगे तो आपके मन में विचार टिकेंगे ही नहीं। हम देखते नहीं, जब तक कोई गुरु वैष्णव की सेवा करे तो हमारे को हमारी इच्छा ही नहीं होती है, उस समय बर्बाद है। ये कर्म जो है एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है हमारी दृष्टि में, जहां पर निंदा तो बहुत दूर की बात है, किसी की निंदा करना, पर चर्चा भी नहीं होती कभी। आप देखो यहां पे कितने लोग 12-13 साल से हो, कभी किसी के बारे में एक शब्द बात भी हुई है? निंदा तो बड़े दूर की बात है, किसी के बारे में गलत शब्द बोलना है तो कोई भी नहीं करता, मतलब पर चर्चा भी नहीं होती। पूरे विश्व में ऐसे कौन सा स्थान होगा जहां पर चर्चा भी ना हो, किसी के बारे में एक शब्द कभी भी नहीं। 13 साल हो गए, कोई एक शब्द कोई कह सकता है कि किसी के बारे में बात भी की गई हो? केवल विशुद्ध भक्ति, केवल विशुद्ध भक्ति। उसी प्रकार से जिस जगह पे ये आचरण द्वारा नहीं है कि गुरु वैष्णव की सेवा पे हमारा जीवन है और आचरण द्वारा नहीं है हो रहा, तो उन लोगों का संग करना, चाहे वो धाम में रहते हो या कोई भी शहर में रहते हो, वो असत्संग के अंदर आता है। कोई वो बाबा हो चाहे गृहस्थ हो, वो जिनका भी संग कर रहे हैं वो असत्संग के, अपने आचरण द्वारा वो दिखा रहे हैं कि गुरु और वैष्णव की के ऊपर पूर्णता निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, इसी को असत्संग बोला जाता है। हमने तो 12-13 साल से यही देखा, हम जो भी हमारे इस सर्कल में आए हैं, किसी के मुख से एक बार शब्द भी नहीं सुना कि गुरु वैष्णव के मनोमय सेवा की आवश्यकता है। आचरण तो दूर की बात, जब शब्द भी नहीं, आचरण नहीं, तो फिर अगर संग करेंगे तो निश्चित रूप से विशुद्ध असत्संग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और विशुद्ध असत्संग का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पूर्णता दैन्यता और निर्भरता होनी चाहिए श्री गुरु श्री वैष्णव के चरणों में, और उसके बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, परम स्वतंत्र आचरण अपने प्रयास से सोचने की भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। जब भी गुरु वैष्णव की सेवा कोई भी प्राप्त हो, अति हर्ष अनुभव होना चाहिए, अरे इतनी विशेष कृपा मेरे पे हो गई, इतनी विशेष कृपा हो गई। अभी माता जी को भी हम बता रहे थे कुछ दिनों पहले कुछ सेवा के कंटेक्स्ट में, कि हमें इतना खुशी महसूस होती है कि सेवा प्राप्त हो, किसी सेवा के कंटेक्स्ट में कोई लक्ष्मी अत्यधिक लग रही थी, फिर भी भीतर कृतज्ञता में डूब रहे थे कि हाँ ये सेवा प्राप्त हो रही है, कितने भाग हैं। तो कभी भी कोई सेवा भी प्राप्त हो, भाग बनाने चाहिए, बदले में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कर्म के भार अगर हो जाएंगे तो कहां किसको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और किसको कोई जरूरत भी महसूस होती है। भाग बनाने चाहिए, और कुकिंग तो सबको करनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर कोई कुकिंग करके वैष्णो सर्व नहीं कर रहा तो ये काम वासना से पार पाना स्वप्न भी मत लेना। और टॉयलेट क्लीनिंग जब मंदिर हो तो ऐसे सुअवसर प्राप्त हो तो जरूर करना चाहिए। वास्तव में सिद्ध भक्तों का दर्शन तो दुर्लभ है ही, परंतु साधक भक्त का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। जो साधक भक्त हैं उनका दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। क्यों? साधक वास्तव में वो है जो गुरु और वैष्णव के आश्रय में लेके साधन करे, भजन करे। मतलब कई शहरों में मिलाने को एक साधक नहीं दिखेगा, सिद्ध तो दूर की बात है, साधक नहीं दिखेगा वास्तव में भजन करने वाला। परम स्वतंत्र आचरण, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यद्यपि क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, यद्यपि स्वतंत्र आमी स्वतंत्र आचार, ये जीव को नहीं बोलना चाहिए स्वतंत्र आमी स्वतंत्र आचार, ये जीव के लिए नहीं है, ये ईश्वर के लिए है। स्वतंत्र आमी स्वतंत्र आचार, जीव तो पूर्णता निर्भर है कृपा पे, भक्ति में थोड़ी सी उन्नति के लिए भी। अब जैसे मनोमय सेवा कहते, छोटी छोटी बात हम आपको बताएं, जैसे कि नवद्वीप की परिक्रमा का वीडियो है, हमने कहा सबको रोज देखना चाहिए। यदि सब रोज देख रहे होते तो पता नहीं कितने लोग, कितना अभी वो उसका यूट्यूब में पता चल जाता, पर सब लोग रोज नहीं देख रहे कि इस बात को मनोमय सेवा नहीं मान रहे। गुरु से हम कभी दूर नहीं है यदि उनकी वाणी फॉलो कर रहे हैं। वाणी फॉलो नहीं करें तो गुरु के समक्ष रहते भी गुरु के समक्ष नहीं है, साथ नहीं है। यदि कोई ये रोज नवद्वीप का दर्शन करता है परिक्रमा, क्योंकि आज्ञा हुई है गुरु जी की, हाँ रोज दर्शन करो, इसी से सिद्धि मिल जाएगी। और यही नहीं करे तो हम एक सामान्य बात मान रहे हैं, सामान्य मानव मान के उल्लंघन कर रहे हैं निर्देश का, तो इसी से अवनति होगी। छोटी छोटी बातों से अवनति होती है, पैसे भी नहीं लगने, फ्री का इंटरनेट होता है, नवद्वीप के दर्शन करने किसी को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय आपके। और नवद्वीप के दर्शन करने में क्या समस्या हो सकती है, हम कितनी व्यर्थ की बातें करते हैं। तो ये आज्ञा पालन है, सुबह उठना, नवद्वीप के दर्शन करना, बदले बनाने की इच्छा ना होना स्वयं की या किसी और शारीरिक व्यक्ति की। और यदि कोई मनोमय सेवा करना चाहता है तो वो असंभव है तब तक जब तक अच्छे संबंध ना हो। जब संबंध ही नहीं है, बातचीत ही नहीं होगी तो सेवा कैसे होगी? सेवा तो उसी करी जाती है जिससे संबंध अनुभव होता है, और संबंध अनुभव करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना होता है। विनोद अच्छा मंथन कर रहे हैं कि टाइम इन्वेस्ट किए बिना तो संबंध ही नहीं होंगे, और संबंध ही नहीं होंगे तो सेवा ही नहीं होगी, और सेवा ही नहीं होगी मनोमय तो अनर्थ ही नहीं जाएंगे, अनर्थ ही नहीं जाएंगे तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तो रुचि नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, प्रेम कैसे होगा? तो जो हम बोल रहे हैं सब ध्यान से सुनना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। ये तृष्णा के साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं जगन्नाथ मेहर करके, वह बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए जो हम कह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ये जो राधा नाम है आपको पता नहीं है ये क्या चीज मिल गई है, ये इतनी बड़ी निधि मिल गई है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी निधि है ये। प्रबोधन सरस्वती इत्यादि आचार्यगण बता रहे हैं, तासवाय नामामृत बहुत दूरे अवस्थित निकुंजेर निगूढ़ रतन। ये जो राधा नाम है ये क्या है? निकुंजेर निगूढ़ रतन, ये रतन है, ये ज्वेल है, कहां का? निकुंज का। निकुंजेर निगूढ़ रतन, ये निगूढ़ रतन है क्या? राधा नाम। तो राधा नाम हम सही रूप से लें, और जैसे श्री कृष्ण लेते हैं, क्योंकि क्या है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रीति की जो असली रीति है वो श्री कृष्ण ही जानते हैं। वदने ते राधे राधे विनोद नागर जपे श्याम अंगे प्रेमेर विकार। वदने ते राधे राधे, वदन से राधे राधे नाम जपते हैं कौन? विनोद नागर। विनोद नागर जपे श्याम अंगे प्रेमेर विकार, श्याम के अंग में प्रेम के विकार होते हैं। प्रबोधानंदेते कोय अनंत महिमा मोय राधा नाम जीवा तू आमार। प्रभुनाथ सरस्वती कहते हैं कि अनंत महिमामय राधा नाम है, राधा नाम जीवात्व मां, राधा नाम मेरा जीवन है। तो हम भी आचार्यों के चरणों में यही प्रार्थना करें कि राधा नाम जैसे उनका जीवन है वैसे राधा नाम हमारा भी जीवन बने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम।